तो आप जानना चाहते हैं कि इच्छा रहित कैसे हुआ जाए, इच्छा का कारण कर्तापन है, तो कर्तापन से कैसे मुक्त हुआ जाए। देखिए, इसके लिए सबसे पहले अपने बारे में समझ होना बहुत ज़रूरी है। ये बात कह तो दी जाती है, कहना बड़ा आसान है कि मैं देह नहीं हूँ, लेकिन समझता हूँ अपने आप को देह। तो इस निश्चय से, इस देह के निश्चय से मैं कैसे मुक्त हूँ? तो जब तक आपको अपने बारे में सही सही निश्चय नहीं होगा, तब तक इस देह भाव से आप कभी भी मुक्त होने की कोशिश भी नहीं करोगे। केवल सत्संग सुन लेने मात्र से या ऊपर ही ऊपर वाणी या शास्त्र कोई पढ़ लेने मात्र से इस बात का सही सही निर्णय नहीं होता। इसलिए महाजी कहते हैं, प्रेमी, इस पर गहरा विचार करना ज़रूरी है। और जब महाराजी गहरा विचार की बात करते हैं, तो वो शास्त्र में जो लिखित विचार है या वाणी में जो प्रकट विचार है, उस पर गहरा विचार करने की बात करते हैं। किसी किताब में लिखी हुई बातों की वो बातें नहीं कर रहे, क्योंकि शास्त्र जो है या सत्पुरुष के कलम से जो लिखा गया या उसकी वाणी के द्वारा जो प्रकट हुआ, वो ईश्वर वचन है। उसमें असत्य नाम की चीज़ तो 0.1% भी नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बिना गुरु के गति नहीं। कि संसार में जिस मनुष्य का भी निश्चय पूर्ण गुरु पर आ जाता है, चाहे फिजिकली उससे भेंट हुई हो चाहे ना हुई हो, लेकिन उसका निश्चय किसी पूर्ण सत्पुरुष पे आ जाता है, तो लाभ उसका क्या होता है? उसका यही लाभ होता है कि उस सत्पुरुष की बात पर वो डाउट नहीं करता। सत्पुरुष पर निश्चय आने का मतलब ही होता है कि उसकी बात पर उसका पूर्ण निश्चय है। वो ये तो कह सकता है, मैं 10 बार पढ़ चुका हूँ, 10 बार सुन चुका हूँ, लेकिन बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, ये बात तो कह सकता है। लेकिन ये नहीं कह सकता कि मुझे इसमें थोड़ा डाउट है, ये नहीं कह सकता। यदि ये कह रहा है तो वो झूठ बोल रहा है कि मेरा कोई गुरु है, ये स्पष्ट बात है। इन दोनों में यदि कोई भेद है तो उसने एक मन में वहम पाल रखा है कि मैंने गुरु बना लिया है, और गुरु की बात पे डाउट भी है मुझे। तो यहीं आके बड़ी बड़ी संगतें फेल हो जाती है। लाखों करोड़ों की संख्या में गुरु को धारण करने वाले लोग फेल हो जाते हैं, और गुरु तो फेल है ही। जिसको मानने वाले, जिसको गुरु बनाने वाले इतने लोग होंगे, तो वहाँ रियलिटी तो वैसे ही नहीं होगी, क्योंकि रियलिटी हमेशा कम होती है। पूरी प्रकृति में रियलिटी हमेशा कम होती है, और यदि ये कहा जाए कम की जगह रेयर होती है, तो ये ज़्यादा उपयुक्त होगा। इसीलिए गीता में लिखा हुआ है कि हजारों में से कोई एक इस मार्ग पर चलता है, और ऐसे हजारों में से कोई एक वहां तक पहुंचता है। तो ये रेयर नहीं हुआ? ये तो रेयर चीज जनरल कैसे हो जाएगी? जरा विचार करके देखो, यदि गुरु की प्राप्ति समाज में या संसार में जनरल हो जाए, तो फिर तो गीता की बात ही झूठी हो जाएगी। पूरे संसार में खोज हो गए थे, शायद दो एक गुरु मिल जाए आपको, और शायद उनमें से यदि किसी को हुक्म हो पब्लिक को गाइड करने के लिए या मनुष्यों का मार्गदर्शन करने के लिए, वो शायद ही कोई होता है, एक ही होता है। ज़्यादातर सारी सृष्टि में, सारी धरती पर एक ही व्यक्ति मिलता है जिसको परमिशन होती है सब लोगों का मार्गदर्शन करने की। ईसा मसीह के टाइम में कोई दूसरा नज़र आता है? हिस्ट्री उठा के देखो, मोहम्मद साहब के काल में कोई दूसरा नजर आता है? ऐसा नहीं है कि धरती सत्पुरुषों से खाली रहती है। महाजी ने कहा, प्रेमी, धरती कभी सत्पुरुष से खाली नहीं रहती, लेकिन उनका जीवन एकांत में खत्म हो जाता है, लोगों के तो कांटेक्ट में ही नहीं आ पाते वो। अब महाराज जी की हालत देखो कि सारा बचपन और सारी उनकी जो किशोरावस्था थी वो तो जंगलों में कट गई, किसी पब्लिक के कांटेक्ट में तो आई नहीं, कोई जानता था महाराज जी को? महाराज जी खुद कहते थे, प्रेमी, जब इनकी किशोरावस्था थी तो गंगोठिया के जंगल में, जो पीर ख्वाजा का जंगल था, रात्रि में तो कोई आता नहीं था वहाँ पर, लेकिन दिन में लोग वहाँ भी पहुँच जाते थे। तो वो कहते थे कि सरकंडों के बीच में बैठ के ये दिन बिताते थे। और जब विचार करके देखो, महाराज जी किस स्थिति के मालिक थे, खुद उन्होंने कहा है कि 3 वर्ष की आयु में इनको पूरा बोध था कि संसार क्या है, ईश्वर क्या है। इसीलिए इन्होंने ईश्वर की तरफ ही चलना उचित समझा, उधर चलते रहे। दुनिया तो नहीं समझती थी उनको। तो उसके बाद जलमादा में जाके खुद महाराज जी ने कहा, लोग क्या जाने इस बात के लिए, जिस चीज की खोज इनको 14 वर्ष से थी वो आज इनको प्राप्त हुई। आत्मदर्शी तो बचपन से ही थे वो, लेकिन वो पूर्ण हालत नहीं होती है। तो महाराज जी कहते हैं, प्रेमी, जो आत्मलीन अवस्था है जहां ये कर्तापन का नाश हो जाता है परमानेंट, जिसके अंदर कर्तापन है उसको जीव कहते हैं, जिसके अंदर कर्तापन है उसको जीव कहते हैं, और जो कर्तापन से मुक्त है उसको गुरु कहते हैं। तो जिस देह में जीव सत्ता कार्य नहीं कर रही है उसमें ईश्वर सत्ता कार्य कर रही है। और महाराज जी की शब्दावली भी देखो आप, तो महाराज जी को हर जगह यही कहते पाओगे आप कि जैसी उसकी आज्ञा है वैसा ज्ञान प्रकट हो रहा है, यही तो कहते थे महाराज जी। और देह को कभी मैं नहीं कहा उन्होंने, ये उनकी देह हो तब कहे ना मैं, वो आत्मलीन सत्पुरुष मैं कैसे कहेगा, वो देह है ही नहीं, वो तो ईश्वर सत्ता है डायरेक्ट जो आपसे बात कर रही है। यहां आके पता लगता है कि महाराज जी ने ये क्यों लिखा समता विलास में, गुरुपद सिद्धांत में, कि वास्तव में गुरु शब्द रूप परमेश्वर है जो घट घट व्यापक है। जो गुरु की देह है वो घट है, और उसके अंदर जो व्यापक है, जो बोल रहा है, वो शब्द रूप परमेश्वर है। और क्या प्रमाण चाहिए आपको, बताइए मुझे। गुरु ने इतना स्पष्ट लिखकर छोड़ दिया, और खुद कहते थे, सदगुरु तो अंतर रमे पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी हो के घटका पाठ उघाल, साफ साफ तो कहते थे। हम नाम रूप ही बाहर फंसे पड़े हुए हैं, उसी के लिए झगड़ते रहते हैं। गुरु कह रहा है मैं अंदर, और जो सेवा करते गुरु की, फिजिकल सेवा करते थे, उनसे भी महाराज जी कहते थे, प्रेमी, ये खल्लड़ गुरु नहीं है। जिस दिन साधना करके अंदर कुछ अनुभव करोगे, उस दिन पता लगेगा कि गुरु को मैंने समझा क्या था और गुरु निकला क्या। तो यही हालत जो है हम सब की है कि इतनी गहरी अज्ञानता में पूर्ण गुरु मिलने के बाद भी हम फंसे रहते हैं कि सारी जिंदगी गुरु की बातों पर विचार करने की फुर्सत ही नहीं होती, उसकी विचार करने की जरूरत ही नहीं समझते। तो हम सत्संग की बातें करते हैं, सत्विचार नहीं करते, सत्विचार जानते ही नहीं। इफेक्ट ये, हम सत्विचार जानते ही नहीं, सत्विचार क्या होता है। समता विलास में तो महाराज जी ने कई जगह लिख दिया, लेकिन हमने वहां भी पढ़ने की कोशिश नहीं करी कि गुरु लिख कर क्या दे रहा। तो इसीलिए जब तक आप गुरु की हर बात पर गहराई से विचार नहीं करोगे, आपकी बुद्धि के अंदर से ये वहम कभी भी नहीं मिट सकता कि मैं देह नहीं हूं। तो बार बार हम एक वैराग्यवाणी में दोहा उच्चारण करते हैं, ये संसार सराय जीव मुसाफिर नीत, मंगत खोज सत शांति, औध जात है बीत। कभी इस वाणी पर भी विचार करके देखा, ये बात इसलिए कही जा रही है कि हमने गुरु धारण किया है। हम कहते हैं महात्मा मंगतराम जी मेरे गुरु, इसीलिए ये बात मुझको गंभीरता से विचार करनी चाहिए कि गुरु कह क्या रहा है। इस संसार में ये जीव नित्य का मुसाफिर है। नित्य का मतलब होता है निरंतर, हमेशा, परमानेंट। तो मुझको महाराज जी मुसाफिर करके संबोधन कर रहे हैं, देह को तो संबोधन नहीं कर रहे महाराज जी। महाराज जी उसी को संबोधन करेंगे जो जिंदा वस्तु होगी, जिसमें होश होगा, जिसमें कॉन्शियसनेस होगी, जिसमें चेतना होगी, उसी को तो संबोधन करेंगे। तो मेरे हाथ पैरों में तो चेतना है नहीं, ये कभी बोल ही नहीं सकती कि मैं हूँ, मैं ही बोलता हूँ कि मैं हूँ। तो जिसके अंदर चेतना है, जो मैं कह रहा है, उसका नाम है जीव। और गुरुवाणी कह रही है कि तू नित का मुसाफिर है, अर्थात तू परमानेंट मुसाफिर है। और ये संसार क्या है, ये कह रहे हैं सराय है। और महाजी कह रहे हैं देह और संसार ये एक साथ प्रकट होते हैं, ये एक ही वस्तु है, देह करके संसार है। तो इसका मतलब मैं इस देह में नित का मुसाफिर हूं। ये देह सराय की तरह से है, तो सराय में जब कोई मुसाफिर रुकता है तो किस भाव से रुकता है, उसको अपनी मंजिल याद होती है, मैंने कहाँ जाना है। तो कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ वक्त के लिए वो सराय में टिकता है। क्यों टिकता है, ताकि आगे की यात्रा वो सफलतापूर्वक पूरी कर सके। तो सराय में रुकना उद्देश्य नहीं होता, उसका उद्देश्य सफर पूरा करना होता है। तो मुझको भी ये सराय दी गई है, देह रूपी सराय, और ये सराय ऐसी है जिसको महाराज जी मंदिर भी कह रहे हैं। क्यों नर मोह मंदिर में सोया, खोया नहीं सोया। और जन्म अमोलक भ्रम में खोया, ये अमूल्य जन्म तूने इस भ्रम में खो दिया कि मैं देह हूं। और एक जगह वाणी में महाराज ने यह भी कहा, देह मस्जिद। मंदिर और मस्जिद तो पूजा घर है ना दोनों, तो ये उपासना का घर है। क्यों उपासना घर है ये, क्यों ये मंदिर है, क्यों ये मस्जिद है, कि हम जानते हैं कि मंदिर में ईश्वर की प्रतिष्ठा होती है। और गुरु खुद कह रहा है सदगुरु तो अंतर में, इसलिए जिस गुरु से तुम्हें भेंट करनी है, जो गुरु ब्रह्म है, जो गुरु ईश्वर है, वो इस देह के अंदर मौजूद है। और मुझको वो जीव करके संबोधन कर रहे हैं, मैं भी इस देह के अंदर मौजूद हूं। ईश्वर अंदर होते हुए भी, गुरु अंदर होते हुए भी मेरी उससे भेंट क्यों नहीं हो रही है, जबकि वो कह रहा है कि मैं तुझको बार बार पुकार रहा हूं, हर पल पुकार रहा हूं, पल पल करे पुकार, लेकिन तू क्यों नहीं सुन रहा उसकी, तू अंतर्यामी गुरु की बात क्यों नहीं सुन रहा, उस ईश्वर के संदेश को या उस ईश्वर के सिग्नल को तू क्यों नहीं पकड़ पा रहा। क्यों, क्योंकि मैं मन के सिग्नल को पकड़ रहा हूं। जो मन का सिग्नल क्या है, वो वासना का सिग्नल है, उससे निरंतर जो है जो करंट्स फ्लो कर रही हैं वो वासना के करंट्स फ्लो कर रही हैं, मैं उसके अंदर जो है वो चिपका पड़ा हुआ। इसलिए ईश्वर का जो सिग्नल है वो तो आ रहा है लेकिन मुझको हॉन्ट नहीं कर रहा, मैं उसको अनसुना कर देता हूँ। वाणी के रूप में आता है सिग्नल, उसको मैं अनसुना कर देता हूँ। सत्संग के रूप में आता है, उसको भी अनसुना कर देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इतना होता है जिस समय सुनता हूँ उस समय मन कहता है कि बात तो ठीक है, जब उठ के जाता हूँ फिर संसार को पकड़ लेता हूँ, कहता हूँ बात तो ठीक है। तो सारा दिन तो संसार की बात ठीक है, एक पल या एक क्षण के लिए मैंने गुरु की बात कह भी दी ठीक है, तो उसका संस्कार बनेगा आपके अंदर? करनी जो कर रहा है वो संस्कार तो उसी का बनेगा ना, तुम्हारे जीने की दिशा वही रहेगी। इसीलिए पहले तो आपने ये निर्णय करना है कि मैं जीवूं, और ये आप सत विचार के द्वारा ही निर्णय करोगे, और कोई चीज आपको ये निर्णय नहीं करा सकती। यहां तक कि मौत भी आपको निर्णय नहीं करा सकती कि मैं जीवूं, उस समय भी देह के कारण छटपटाओगे आप, अरे मैं मर जाऊंगा, अरे मेरी मौत आ गई। आप हर पल हर क्षण बस यही याद रखोगे, इतना गहरा इस देह से मोह है, इतना गहरा अज्ञान, इतना गहरा भ्रम बन हुआ अपनी देह के प्रति कि आप एक पल भी इस मोह से मुक्त नहीं होते कि मैं देह हूं। तो इसीलिए आपके सामने कई बार ये एनालिसिस पेश किया जाता है कि देखो भाई, दुखी तुम्हारी देह होती है या दुखी तुम होते हो, जरा विचार करके तो देखो। जो विचार मैं कर सकता हूँ वो तो करके देखो। हो सकता है शास्त्र की बातें बड़ी कठिन होती हों, मेरी बुद्धि उसको एनालाइज नहीं कर पाती है, लेकिन जो सरल बात है उसको तो विश्लेषण करके देखो। ये तो मैं जानता हूँ ना कि मेरे मन में इच्छा उठती है, मान लिया मेरे मन में एक इच्छा उठाई, मैं अभी तरुण हूं कि मैंने पिक्चर देखनी है, और माता पिता उसकी आज्ञा नहीं दे रहे, इच्छा यदि आपके अंदर तीव्र हो जाए वो और माता पिता आज्ञा ना दें, जरा विचार करके देखो आपके अंदर कितनी बेचैनी होती है। ये सरल सी बात है, हम सब इस अनुभव से गुजर चुके। तो अब विचार करिए जरा, मन के अंदर एक संकल्प उठा है पिक्चर का, क्योंकि मन के अंदर संस्कार बने हुए हैं, उसके पहले भी देखी होगी आप, संस्कार बने हुए हैं, तो संस्कारों के कारण वो संकल्प उठा है। जिसने जिंदगी में फिल्म नहीं देखी उसके अंदर फिल्म की कल्पना उठेगी नहीं, जिसने देखी है जिसके संस्कार बन चुके हैं मन में उसी के अंदर पिक्चर की कल्पना उठेगी। तो इसका मतलब जो कल्पना उठती है मेरे अंदर, इच्छाएं उठती हैं, वो मेरे पास्ट संस्कारों का नतीजा है। तो कल्पना तो उठ गई, कल्पना नहीं उठी थी मैं चैन से था, कल्पना उठने के बाद यदि वो पूरी नहीं हो रही है या जितनी डिले हो रही है, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो जिसको हम मोटे रूप में कहते हैं कि मेरा मन बड़ा बेचैन हो रहा है, जबकि हम गलत बोल रहे हैं, ये हमारी शब्दावली ठीक नहीं है। मन के अंदर जो इच्छा उठी है उसके कारण मैं बेचैन हो रहा हूं, बेचैनी मुझको हो रही है। मन उसी प्रकार जड़ है जिस प्रकार ये हमारे हाथ पैर जड़ है। ये कभी कहते हैं कि मैं हूं, मुझे बचाओ, मैं मर रहा हूं, जैसे देह नहीं कहती ऐसे मन भी नहीं कहता है। जैसे देह के अंदर सारी क्रियाएं हो रही हैं, खून चल रहा है इसके अंदर, करंट चल रही है इसके अंदर, सब चीज़ चल रही है ना, इसके अंदर एक्टिविटी तो हो रही है इसके अंदर, इसी प्रकार मन में भी एक्टिविटी हो रही है। लेकिन मन भी उसी प्रकार जड़ है जिस प्रकार देह जड़ है। एक एटम में भी एक्टिविटी हो रही है, इंटेंस एक्टिविटी हो रही है, बिल्कुल निश्चित कंट्रोल्ड एक्टिविटी हो रही है, लेकिन फिर भी जड़ है वो। लेकिन जो चेतन है, जिसमें चेतना है, जिसमें कॉन्शियसनेस है, वही सुख अनुभव करता है, वही दुख अनुभव करता है। तो जब आप इस प्रकार सही विश्लेषण करते हो अपना, और गहरा विश्लेषण करते हो और बार बार करते हो, तब आप गुरु के इस निश्चय को पकड़ लेते हो कि गुरुवाणी ठीक कह रही है, देह सागर विकार का जीव नित गोता खाए, मंगत बिन प्रभु भगत के तीन काल दुख पाए। अब ये वाणी समझ में आती है आपको, ये वाणी क्या कह रही है। गुरु कह रहा है कि देह सागर विकार का जीव नित गोता खाए। देह विकार का सागर है, सागर वर्ड यूज कर रही हूं, जिस प्रकार सागर में खारा पानी होता है, और जीव यदि, जीव का मतलब कोई मनुष्य, उसमें यदि गोता खा जाए समुद्र में, तो क्या दुर्दशा होगी, सारे पेट में नमक का पानी भर जाएगा, उसे कितना तड़पेगा वो। तो ये देह विकार का सागर है, जिसको महाजी बार बार कह रहे हैं कि ये पांच तत्व का देह है, पांच तत्व का संसार है, और पांच तत्व के पांच विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो इन पांच विकारों की इच्छाएं हमारे मन के अंदर निरंतर उठती रहती हैं, और किसी ना किसी इच्छा का शिकार मैं हर वक्त होता रहता हूं। हर वक्त कोई ना कोई इच्छा पकड़ के मैं कर्म करता रहता हूं। तो पूरा का पूरा 100% मेरा विकारी जीवन है, जिसको हम संसारिक जीवन कहते हैं। तो जीव कितना तड़पता होगा, कितना बेचैन होता होगा। इसलिए देखो ना, जिसको देखो सुबह शाम घर में कलेशी होता रहता है, पत्नी पति से कलेश करती है, पति पत्नी से कलेश करता है, सभी के अंदर अंतर्द्वंद चलता रहता है। तो एक दूसरे को बेचैन करते रहते हैं, चैन के ख्वाब देखते रहते हैं। ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है। तो हर समय हमारे अंदर जो बेचैनी बनी रहती है, कभी इसका एनालिसिस नहीं किया, ये बेचैनी का कारण क्या है। हम कहते हैं बीवी कारण है, बीवी कहती है पति कारण है, बच्चे कहते हैं बाप कारण है, बाप कहता है बच्चे कारण है, एम्प्लॉय कहता है मालिक कारण है, व्यवसायी कहता है ग्राहक कारण है। बेचैनी का कारण हम दूसरे पे थोपते रहते हैं, हमने कभी नहीं सोचा बेचैनी का कारण मेरे अपने ही मन के अंतर्गत है। इसी को महाराज जी वासना विकार कह रहे हैं। पांच विकार की जगह उन्होंने एक वर्ड यूज कर लिया, वासना। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि वासना का स्रोत क्या है, वासना का स्रोत मेरा ही मन है। और उस वासना की पूर्ति का साधन वो मेरी देह। तो ये देह साधन है वासना पूर्ति का, और संसार मटेरियल है उस वासना पूर्ति का। ये इंस्ट्रूमेंट है, ये मेरे पास मशीन है, जिससे मैं साधना की अपनी वासना की पूर्ति करता हूँ, और संसार को एज ए मटेरियल यूज करता हूँ, मेरे लिए रॉ मटेरियल है, जिसके द्वारा मेरी वासना पूर्ण होती है। तो ये देह जो मेरे लिए मात्र इंस्ट्रूमेंट है, और जिसको गीता भी कह रही है भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, इस यंत्र रूपी देह में स्थित प्राणियों को मैं अपनी माया से संसार में भरमाता हूँ। वो माया क्या है, वो मेरा प्रारब्ध है। मेरे ही प्रारब्ध के अनुसार प्रभु, अंतर्यामी प्रभु, मेरी इस देह को संसार में घुमाते हैं। तो अब बताइए, इंस्ट्रूमेंट मेरा है, ये मेरी देह है, लेकिन इसका मालिक ईश्वर है। इसीलिए महर्षि रमण कह रहे हैं, देखो संतों की बात तो देखो कितनी गहरी होती है, जिन कर्मों को करने के लिए ये देह पैदा हुई है, वो सारे कर्म इस देह को करने होंगे, तुम चाहो या ना चाहो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। और यही बात भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, ये युद्ध तो मैंने पहले ही रच दिया है, ये युद्ध तो तेरी देह से होगा, तू इसको रोक नहीं सकता, तेरा चाहना या ना चाहना इससे इस युद्ध पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। अब बताइए, आज के युग में महर्षि रमण है, हजारों साल पहले कृष्ण, क्या गीता के संदेश में महर्षि रमण के संदेश में कोई अंतर है? एक लेश मात्र भी अंतर है। और महाराज की वाणी भी यही कह रही है, तीन सतपुरुष की बात देख लो, जो हो ना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके तिल भर तिस फरमाही। कभी इसका अर्थ सोचा क्या है? ये यही अर्थ है कि ये देह अंतर्यामी ईश्वर के कमांड में चल रही है, मेरी कमांड में नहीं चल रही है, मेरे अंदर मात्र कर्तापन है, वो भी झूठा है। इसलिए प्रेमी ने जब प्रश्न किया महाराज जी से, महाराज जी एक चीज बताइए, सारी वाणी सारी सारे सत्पुरुषों के ग्रंथ एक ही बात कहते हैं कि जीव कर्ता नहीं है। जब मैं कर्ता हूं ही नहीं, कर्म देह करती है और आपके ईश्वर के कमांड में करती है वो, क्योंकि जैसा प्रारब्ध है देखा, तो हम क्यों फल भोगते हैं? तो महाराज जी क्या उत्तर देते हैं? महाराज जी कहते हैं, प्रेमी जब तक तू अपने आप को कर्ता समझता है तब तक भोगता भी तू ही है। एक छोटी सी गलती कर इतनी बड़ी सजा, सारी जिंदगी जो कर्म मैं करता ही नहीं, प्रभु मुझसे करवा रहे हैं, जैसे मैं संस्कार लेके आया हूं उसके अनुसार देह कर्म में लगाई जा रही है, इस देह से कत्ल भी करवाते हैं प्रभु, लेकिन वो संस्कार मैंने ही बनाए कभी, तो इस एक गलती की इतनी बड़ी सजा कि पूरा जन्म मैं भोगता रहता हूं सुख दुख के रूप में, और जो मैंने करा है मैंने भोगा है तो संस्कार भी मेरे बन जाते हैं फिर वो। तो ये भोगवादी संस्कारों के जो संस्कार बनेंगे, इन भोगवादी कर्मों के जो संस्कार बनेंगे वो तो बिगड़े हुए संस्कार बनेंगे। तो अगला जन्म आपका घोर रजोगुणी घोर तमोगुणी हालत में होगा, सतोगुणी संस्कार तो बनाए नहीं तुमने, सतोगुणी संस्कार तो उसके बनते हैं जिसको पहले अपना होश होता है, मैं जीव हूं, मैं इस देह के बंधन में हूं, मैं इस मन के बंधन में हूं, अब मैंने इस मन और तन का उपयोग अंतर्यामी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए करना है, ना कि भोग विलास करने के लिए करना है। ये स्पष्ट निर्णय होता है जो गुरु का शिष्य कहता है अपने आप को, कन्फ्यूज्ड होकर नहीं जीता वो। मैं जरा सोच के देखूं, मैंने आज तक कभी इस कन्फ्यूजन से मुक्त होने की कोशिश करी क्या? मुझे होश रहता है कर्म करते हुए, इसीलिए मैं जब चाहूं किसी को पकड़ के बैठ जाता हूं, उसी की बुराइयां शुरू कर देता हूं, अपना होश नहीं, अपने बारे में चिंतन की फुर्सत नहीं, दूसरे के बारे में सोच रहा हूं, और वो भी उल्टा सीधा। तो किस प्रकार मूर्खतापूर्ण जीवन जीता हूं मैं, जरा पास्ट अपना विचार करके देखूं तो शायद हो सकता है ज्यादा ग्लानी हुई तो आत्महत्या करने की कोशिश करें आप, कि मैंने करा क्या जिंदगी में पाप के अलावा, सारी जिंदगी गुरु गुरु रटता रहा, करे तो मैंने घोर संसार जैसे कर्म है सारे, कैसा गुरु है मेरा, कैसा गुरु मैंने जीवन में धारण किया है। तो इसीलिए कभी हम ये गहराई से विचार ही नहीं करते, इसको कहते हैं गहरा विचार। तो समता विलास महाराज जी ने इसलिए लिखी थी, उन्होंने सहायता की थी, कोई शास्त्र ऐसा डिटेल नहीं है जितनी समता विलास में डिटेल्स है, कि एक भोगवाद का चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर पांच विकारों पर लिख दिया महाराज जी, कि देख तेरा कैसा जीवन है, तू देख तो सही तू कैसा जीवन जी रहा है, भोगवाद स्थिति पढ़कर देखो तो यदि समझ में आ जाएगा ना चैप्टर और सही विवेचन कर लोगे तो भोगों से नफरत हो जाएगी, आप पक्की बात है नफरत हो जाएगी। खुद ही समझ जाओगे कि भूख लगती है, खाना खाना तो जरूरी है क्योंकि देह की रक्षा करनी है, लेकिन स्वाद जब सामने आएंगे ना कहेगा ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि स्वाद जब आएंगे तो स्वाद ले लेके खाएंगे, उसकी आसक्ति पैदा होगी जिसको महाराज जी राग कह रहे हैं, और जब आसक्ति पैदा होगी तो बार बार उसकी याद आएगी, संस्कार बना लेगी, एक बार की स्वादिष्ट चीज खाए अपना संस्कार बना लेगी, वो संस्कार आपके अंदर सैकड़ों बार कल्पना पैदा करेगा वो चीज खाने को मिलनी चाहिए। तो बताइए, एक स्वाद लेकर मैं कितने लंबे बंधन में आ गया और मैं कितनी बार परेशान होऊंगा उस चीज को प्राप्त करने के लिए। और लाखों आइटम है तो मेरी क्या दुर्दशा होने वाली है, विचार करके तो देखो। मैं घर के अज्ञानी लोगों की नकल करूं या गुरु की नकल करूं? करता तो मैं उन्हीं की नकल हूं जो मेरे साथ रहते। तो इस बेहोश होकर मैं जीवन जीता हूं इस बेहोशी के साथ, और मेरा अंत बड़ी गहरी वेदना को लेकर होता है, गहरी तड़प को लेकर होता है। जिसने गुरु धारण किया है कभी याद तो आ जाती है कि गुरु करने को क्या करा है, मैं कर क्या रहा हूं, तो उसके अंदर बड़ी घोर निराशा होती है कि मैंने गुरु की बात मानी नहीं, अब मेरे ये दिन आ गए, अब मैं संसार से जाने वाला हूँ। उसको अपनी जीवन की विफलता याद आती है, अब उसको बचाने वाला कोई नहीं, गुरु भी नहीं बचा सकता। गुरु आपके संस्कारों की रक्षा करता है, संस्कार जो आपने खुद बनाए हैं वही मिलेंगे आपको। महाराज के एक शिष्य हुए हैं, अब पता नहीं वो जीवित हैं या नहीं है, यादगार पल में उनका संस्मरण छपा है। वो मास्टर टंडन थे, तो जब उनकी लगभग 86-87 वर्ष की आयु थी तब मुझको चंडीगढ़ में मिले थे, तब मैं उनका संस्मरण नोट करने गया था जनरल साहनी के साथ। उस समय जब बातचीत उनसे हो रही थी तब उन्होंने कहा, जिस समय महाराज जी ने मुझे दीक्षा दी उस समय एक चेतावनी दी थी महाराज जी ने मुझे कि प्रेमी, पिछले जन्म में भी तुझको नाम दिया गया था लेकिन तूने जपा नहीं, अब ऐसी गलती मत करना। अब 86-87 का वर्ष का मतलब होता है कि देह की अंतिम अवस्था है। अगली बात पूरी करने से पहले वो रो पड़े, पत्नी भी उनके संग थी, उनके बच्चे भी संग थे, बेटा उनका पुलिस में था उस समय। कहते आज आप पूछ रहे हो मेरे अंदर इतना गहरा अफसोस है, मैं आपसे कह नहीं सकता कि ये जन्म भी मैंने निरर्थक खो दिया, मैंने इस जन्म में भी सिमरन नहीं किया। जबकि वो डेड ऑनेस्ट व्यक्ति थे और कंप्लीट सिंप्लिसिटी वाला उनका जीवन था, लेकिन यही धोखा खा गए। कभी ना समता विलास पढ़ी, वाणी गाई होगी या सुनी होगी, कभी इस पर विचार नहीं किया कि वाणी ये कह क्या रही है। देह सागर विकार का जीव नित गोता खाए, ये देह विकार का सागर है, और मैं कह रहा हूं मैं देह हूं। यदि मैं देह हूं तो गुरु क्या कह रहा है मुझे, तू विकारों का सागर है, अरे डूब मरो चिल्लूवर पानी में। यदि मैं विकारों का सागर हूं तो मनुष्य कल्याण से योग्य नहीं हूं। लेकिन गुरु कह रहा है तू इस विकार के सागर में गोते खा रहा है, इसका मतलब देह के बंधन से मुक्त होने के लिए तुझको मनुष्य जन्म दिया गया है। देह के बंधन से मुक्त होने के लिए तुझको मनुष्य जन्म दिया गया है, या यूं कहिए मानव देह दी गई है, इस जीव को मानव देह दी गई है एक साधन के रूप में, कि इस मानव जन्म में तू इस बंधन से मुक्त हो सकता है। और वो मुक्ति रूप है क्या चीज, जो मुक्ति रूप है उसका नाम है ईश्वर। वो इस देह के अंदर खुद विराजमान है, इसीलिए तो गुरु नाम देता है, मंत्र देता है। कि तू मन को संसार के भोगों के सिमरन से हटाकर इस नाम रूपी गुरु का संग करने की कोशिश कर, नाम रूपी ईश्वर का संग करने की कोशिश कर। इसीलिए महर्षि रमण कहते हैं कि मंत्र गुरु ईश्वर एक चीज है। ये कब एक चीज है? जब मंत्र गुरु से प्राप्त हो या गुरु की परमिशन उस मंत्र को जपने की हो, तब वो गुरु है। क्योंकि आप गुरु को जानते ही नहीं हो। शब्द रूप परमेश्वर है ना गुरु, तो उसका तो परिचय नहीं, आपको जानते ही नहीं, कैसे याद करोगे उसको आप? तो इसीलिए वही शब्द रूप परमेश्वर नाम रूप में मंत्र रूप में अवतार लेता है, गुरु के माध्यम से अवतार लेता है। इसीलिए गुरु कहता है तू इस मंत्र का जाप कर, इस नाम का जाप कर। इसलिए नाम को या मंत्र को लाइव गॉड कहा जाता है, वो चेतन मंत्र है, वो शक्ति नहीं है, वो चेतन शक्ति है, वो प्रकाश नहीं है, चेतन प्रकाश है। उसके लिए शब्द तो देखो क्या ही उसकी हुए संतरवास में। चेतन का मतलब होता है कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस पावर है उसके अंदर। मैं उसको मंत्र समझ लेता हूँ, महामंत्र को भी कहता हूँ ये मंत्र है। अरे ये मंत्र नहीं, ये गुरु है। इसलिए मंत्र की वाणी में लिखा हुआ है सत मंत्र सिमरन करे उठत बैठत नर जोए। सत कहते हैं ब्रह्म को, सत कहते हैं परमेश्वर को। सत का मतलब सत्य नहीं होता है, तत्मंत्र दो शब्द आए इसमें। महामंत्र के महिमा की वाणी पढ़ो, तत्मंत्र और सतमंत्र। तत्व भी ब्रह्म को कहते हैं। इस सृष्टि का तत्व क्या है? ब्रह्म। ये ब्रह्म से ही सृष्टि बनी। तो ये मंत्र खुद ब्रह्म रूप है, खुद गुरु रूप है, खुद ईश्वर रूप है। तो इसीलिए जो इसको ईश्वर समझकर, लाइव गॉड समझकर, मौन होकर मन का संग छोड़कर इस मंत्र का संग करता है, तो धीरे धीरे इस मंत्र के संस्कार आपके मन के अशुद्ध संस्कारों को भस्म कर देते हैं। इसलिए महाजन कहता है प्रेमी, एक दिन बैठे थे देवराज जी सामने, महाराज जी के जगाधरी की बात है, और उस समय दाएं बाएं जो महाराज जी कुटिया थी वो उसमें छोटे छोटे पेड़ लगे हुए थे, लगाए गए थे जब, बाद में तो बड़े हो गए थे वो। तो शाम का वक्त था, सारे प्रेमी जो थे महाराज जी के कुछ शिष्य उसमें से, वो चादर ओढ़ के बैठ के अपने सिमरन में बैठे हुए थे। तो देवराज जी बोले महाराज जी से, महाराज जी आपने तो सबको योगी बना दिया। तो खुली बात महाराज जी से करते थे। तो महाराज जी कहते हैं प्रेमी, कोई मजजी जोन से आया है, कोई खोतेदी जोन से आया है, इनको अपने अपने संस्कार कट लेने दे। साफ साफ कह रहे हैं गुरु मंत्र के जाप से, सिद्ध मंत्र के जाप से जन्म जन्मांतर के संस्कार जो मन में हैं, ये सिद्ध मंत्र का जाप उसको भस्म कर देता है। आप तो जानते ही नहीं मेरे अंदर क्या संस्कार है, ये तो गुरु जानता है। तो इसीलिए धीरे धीरे ये संस्कार आपके वाश आउट होते हैं। लेकिन कब? जब गुरु की वाणी को समझकर, देखो तो गुरु कंडीशंस क्या क्या लगा रहा है सिमरन में। जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाए अपार, गुरुवाणी तो ये करे। जो इस मंत्र का प्रेम से डिवोशन के साथ सिमरन करेगा उसका मंगल पाए अपार। अपार कहते हैं लिमिटलेस को, मंगल कहते हैं कल्याण को या मोक्ष को, तो उसका अपार कल्याण होगा। तो लिमिटलेस कल्याण क्या है? उसी का नाम मोक्ष। तो इस देह बंधन से, मन के बंधन से ये जीव जीते जी मुक्त हो जाए। तो रास्ता तो सीधा है कि अपनी इच्छाओं को विकार करके देखें। जब तेरी इच्छाएं विकारी की हैं या पांच विकारों की हैं, तो तू क्या कर सकता है? एक ही काम कर सकता है। महाजी कहते हैं प्रेमी, मर्यादा का जीवन अपनाओ। तो मर्यादा का जीवन क्या है? मैं जानता हूं देह की रक्षा के लिए कपड़े की जरूरत है, देखो कहीं रखने के लिए घर की जरूरत है, देह के पालन के लिए भोजन की जरूरत है, ये बेसिक नीड है आपकी, इसकी कोई लिस्ट नहीं है। आपका दिल जानता है कहाँ मैं इच्छाएं पूरी कर रहा हूँ, वासना पूरी कर रहा हूँ, कहाँ मैं आवश्यकताएं पूरी कर रहा हूँ, इसके लिए कोई किसी को तर्क देने की जरूरत नहीं है, आप जानते हो। तो मर्यादा का जीवन व्यतीत करते हुए, ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य लेते हुए, ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य का मतलब यह है कि इस मरण धर्मा देह से मैंने जीते जी मुक्ति प्राप्त करनी है, क्योंकि मैं देह नहीं हूं, देह मेरे लिए ईश्वर प्राप्ति का साधन मात्र है, तो इसलिए इस साधन का मैंने बेस्ट यूज करना है, और मैं पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए यूज करता हूं इसका। जो दुरुपयोग है देह का उसको मैं सदुपयोग कहता हूं। तो इसीलिए मेरी यह दुर्गति होती रहती है। तो जब तक आप इस तरह से नहीं सोचेंगे, और इसमें समता विलास आपकी पूरी सहायता कर रही है, यदि समता विलास समझ ली तो वाणी से कहीं से पिकअप करोगे एक दोहा भी आके आंखें खोल देगा। वाणी सूत्र रूप में है, लेकिन समता विलास सिस्टमेटिक डिटेल्स के रूप में है। तो इसीलिए जिनकी साइंटिफिक बुद्धि है, जिनकी वकालत करने वाली बुद्धि है, वो इसको तर्क के साथ समझ सकते हैं, और यदि इसकी समझ के अनुसार, या यूं कहिए कि गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार, यदि मैं अपना जीवन बनाऊं, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि अंतर्यामी ईश्वर का बोध मैं इस देह के अंदर ना कर सकूं। वो तो तैयार बैठे हुए हैं, जब कह रहे हैं पल पल करे पुकार, वो तो हर पल तुझको अपनी तरफ पुकारा है, तू ही जो है उसकी पुकार नहीं सुन के मन की पुकार सुन रहा है। तो दो ही सत्ता है तेरी, एक मन की सत्ता, एक ईश्वर सत्ता। मन की जड़ सत्ता है, ईश्वर की चेतन सत्ता है, इसीलिए इस जड़ पे तो तू कमांड कर सकता है, खुद चेतन है भाई, तो उस ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी तू, क्योंकि चेतना तो तेरे अंदर ईश्वर की है, और कोई चेतना ही नहीं पूरी सृष्टि में, चेतना केवल ईश्वर में है, कॉन्शियसनेस केवल ईश्वर में है, और मेरे है, तो इसका मैं ईश्वर का अंश हूं या नहीं हूं, बात बिल्कुल सत्य है। तो कौन माता अपने बेटे को दूर रखना चाहेगी, कौन पिता अपने बेटे को गड्ढे में डालना चाहेगा, इसलिए वही मेरी माँ है, वही मेरा पिता है, वो तो हर पल मुझको पुकार रहा है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा, यदि आप ईमानदारी से इस देह के बंधन से, विकारों के बंधन से, और इस फेल्योर से, जीवन के कंप्लीट फेल्योर से यदि मुक्ति चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपना होश संभालना पड़ेगा, और होश यही है कि मैं जीव हूँ, और देह ईश्वर प्राप्ति के लिए मिली है, या यूँ कहिए कि सारे दुखों से मुक्त होने के लिए मिली है। ये बड़ी कठिन डगर है, ये बड़ा कीमती वक्त है, मैं घूमने फिरने में, भोग विलास में इसको व्यर्थ नहीं खो सकता। इसीलिए महाराज जी ने कहा, प्रेमी कम से कम 2 घंटे सिमरन करना लाजमी है, सिमरन से लापरवाही करनी अपनी मूल बर्बादी करनी है, और मैं कहता हूं पैसे की कमाई यदि कम हुई तो मेरी बर्बादी हो जाएगी, घर उजड़ जाएगा मेरा, जिंदगी की बर्बादी का होश ही नहीं है। गुरु कह क्या रहा है, वो कह रहा है खाना खाने से भी ज्यादा जरूरी सिमरन को समझना, और क्या कहेगा गुरु, और आपसे क्या कह सकता है, और मैं कितने बहाने बनाता हूं, संसार के काम बढ़ा लिए, इच्छाएं बढ़ा ली, अपना स्टेटस बढ़ा लिया, अहंकार बढ़ा लिया, अब लोगों को दिखाता फिरता हूं मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये बन गया, मैं वो बन गया, और गुरु को एक किनारे छोड़ दिया, और नाम गुरु का लेता हूं। हमको शर्म ही नहीं आती कि गुरु क्या कह रहा है, मैं कर क्या रहा हूं, शर्म मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं क्यों कहता हूं मेरा गुरु है। तो इस प्रकार से यदि सोचोगे तो कोई कारण नहीं है कि आप ईश्वर मार्ग पर ना चल सको और सफल ना हो सको, और सफलता यही है, जैसे जैसे आप सिमरन करोगे, जैसे जैसे इस समता विलास पर गहरा विचार करोगे, गहरा मनन करोगे, आपको हर वक्त याद रहेगा कि मैं जीव हूँ और इस देह के अंदर मैं फंसा हुआ हूँ। क्यों फंसा हुआ हूँ? क्योंकि ये देह विकार का सागर है, खारा पानी है, ये मेरा दम घुट रहा है इसके अंदर। तो इस बंधन से मुक्ति के लिए ईश्वर मेरा गुरु इस देह के अंदर मौजूद है, वो मरा नहीं है, वो इस देह के अंदर आज भी मौजूद है। उसकी वाणी कह रही है, उसकी बात कह रही है, उसने गुरु ने खुद कहा कि मैं अंदर बैठा हुआ हूँ। और मैं तो ऐसे लोगों को भी आज के दिन भी जानता हूँ, नाम नहीं ले सकता, मजबूरी है, कि अंतर्यामी गुरु उनको बोल कर भी गाइड कर देता है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने गुरु के दर्शन भी नहीं किए फिजिकली। तो इसीलिए विश्वास तो उसको आएगा ना, जिंदा गुरु का, जो उस गुरु की बात मानकर चलेगा। तो इसीलिए अंतर्यामी गुरु की बात समझें, जो वाणी के रूप में प्रकट हुई है, इसको समझने में दिल लगाएं अपना। बुद्धि तो है आपके पास, दिल नहीं लगाते, दिल भोगों में लगाते हैं, घर के कामों में लगाते हैं, समाज में लगाते हैं। तो ईश्वर प्राप्ति अपना लक्ष्य बनाएं, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप देह के मोह से मुक्त ना हो और जीवन आपका सफल ना हो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।